بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ چیپٹر ایک انتہائی حساس موضوع پر ہے، ایک ایسا موضوع جس نے پچھلے 150 سال میں کئی ابہام پیدا کیے، لیکن ان ابہام کی وجہ صرف اس کی حساسیت تھی. کوئی اس موضوع پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. میں اس چیپٹر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. پہلا حصہ اس موضوع کی سنجیدگی اور حساسیت پر بات کرے گا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملات اتنے سیدھے ہیں نہیں جتنے ہم کہہ دیتے ہیں. پہلے حصے میں کئی سوالات بھی کھڑے ہوں گے جو بظاہر ایک ڈیڈ اینڈ، ایک بند گلی نظر آئیں گے، لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار کرے گا. تاریخ میں فوسلز ایک لمبے عرصے سے مل رہے ہیں، اور فوسلز ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو لاکھوں سال سے زمین میں دبی ہوئی ہوں. یہ فوسلز کبھی ڈائنوسورز کے ہوتے ہیں اور کبھی معدوم ہو چکے جانوروں کے. لیکن 1856 کے جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے مستقبل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور بہت سے مذاہب کو چیلنج بھی کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی. یہ دریافت تھی ایک انسان نما کھوپڑی کی، اور انسان نما کا مطلب یہ ہے کہ اس کھوپڑی کی شیپ تو بالکل انسانوں والی تھی، لیکن وہ دریافت انسانی کھوپڑی سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ چپٹی تھی، جیسے انسان جیسی کوئی مخلوق ہو. اس کھوپڑی کی عمر معلوم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ اپنایا گیا جسے کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں، اور اس ٹیکنیک سے پتہ چلا کہ یہ کھوپڑی تو لاکھوں سال پرانے کسی مخلوق کی ہے جو کہ انسان جیسی تھی. لیکن ان لاکھوں سال کے دعوے میں تھوڑا سا شک کرنا ضروری ہے، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک میں اگر سیمپل، یعنی جس چیز کی عمر معلوم کی جا رہی ہے، اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو بہت غلط رزلٹ سامنے آتا ہے. کاربن ڈیٹنگ ایک بہت زیادہ قابل اعتبار طریقہ نہیں ہے. اسی لیے جہاں ایک طرف کھدائی کے دوران ایک کے بعد ایک فوسلز ملنے لگے، وہیں دوسری طرف ان کی عمریں معلوم کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کے علاوہ بھی نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی چلی گئی. مثلاً ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، مثلاً الیکٹران پیرا میگنیٹک ریزونینس، مثلاً تھرمو لومینیسنس ڈیٹنگ، مثلاً ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ، مثلاً انکریمنٹل ڈیٹنگ. اور اس وقت ان ڈھانچوں یا ان کھوپڑیوں کی عمریں معلوم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں ایکسلریٹڈ میس اسپیکٹرومیٹری اور یورینیم تھوریم میتھڈز شامل ہیں. یہ وہ میتھڈز ہیں، یہ وہ ٹیکنیکس ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جو کسی بھی چیز کے پگمنٹس کو ڈائریکٹ سیمپل کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز اتنے ہزار یا اتنے لاکھ سال پرانی ہے. تو اب دو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کھوپڑیوں کی عمر معلوم کرنے کا ایک طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، تیسرا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن جب تمام ٹیکنالوجیز ایک جیسا رزلٹ دکھائیں تو پھر یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ واقعی لاکھوں سال پرانے ڈھانچے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ ایک ڈھانچہ فراڈ ہو سکتا ہے، دو ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں، 10 ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ لوگوں نے فیک ڈھانچے بنائے بھی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب تک 6000 ایسے ڈھانچے مل چکے ہیں جن کی اوتھینٹیسٹی میں، جن کے سچے ہونے میں، جن کا حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقعتاً لاکھوں سال پرانے ہیں. اور اس سے ایک بہت ہی خوفناک تھیوری پیدا ہوئی کہ یہ کھوپڑیاں کسی ایسی عجیب و غریب مخلوق کی ہیں کہ جو انسان سے پہلے اس زمین میں آباد تھی، اور انسان کے بجائے جانوروں کے زیادہ قریب تھی، اور انسان اسی کی نسل سے آگے پیدا ہوئے. اور اس تھیوری کو نام دیا گیا تھیوری آف ایولیوشن، یعنی نظریہ ارتقاء. اب یہ ایک بڑی پریشان کن دریافت تھی، اور ماڈرن نسل کے ذہن میں طرح طرح کے شک اور شبہات پیدا ہونے لگے کہ کیا واقعی ایولیوشن سچ ہے؟ کیا واقعی انسان کسی ایسی حیوان نما مخلوق کی نسل سے ہے؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تھیوری کسی بھی الہامی مذہب سے بہت زبردست طریقے سے ٹکرا رہی تھی کہ پہلے انسان حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کسی حیوان نما مخلوق سے بنا تھا. اب اس ٹکراؤ سے نمٹنے کے لیے تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی. عیسائیوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ سب ڈھانچے، یہ سب فوسلز وغیرہ جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں، انہیں خدا نے صرف ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے زمین میں رکھا ہے. ایسے یہودیوں نے بھی انہیں جھوٹا کہہ کر جان چھڑا لی، لیکن مسلمانوں میں ओपिनियन डिवाइड होना शुरू हो गई, राय तकसीम होना शुरू हो गई। कुछ स्कॉलर्स ने खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ स्कॉलर्स ने एवोल्यूशन के कुछ हिस्सों को मान लिया और कुछ का इनकार कर दिया, और कुछ इस बात पर डट गए कि नहीं, एवोल्यूशन महज एक थ्योरी है, सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक धोखा है। लेकिन मसला ये था कि सिर्फ कह देने से कि ये एक थ्योरी है, एक अंदाज़ा, एक धोखा है, जान नहीं छूट जाती। मॉडर्न एजुकेशन से मुंसलिक नस्ल सवाल करती है, यहाँ तक कि 70s में तुर्की, सऊदी अरब, लबनान और पाकिस्तान वगैरह को बाकायदा एक कैंपेन चलानी पड़ी थी कि एवोल्यूशन झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। आखिरकार स्कॉलर्स की अक्सरियत ने यह हल निकाला कि हमें इस मौजू पर तवक्कुफ़ से काम लेना चाहिए, यानी कि जो चीज़ कुरान में डिक्लेयर नहीं हुई हुई, इस पर बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तवक्कुफ़ से फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ, और इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि 19% मुसलमान, 19% मुसलमान ये मानने लग गए हैं कि इंसान एवोल्यूशन ही की पैदावार है। बल्कि 2009 में जब मैकगिल यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के हाई स्कूल्स में एक सर्वे किया था और स्टूडेंट्स के सामने ये सवाल रखा था कि क्या इन फॉसिल्स को देखकर आप ये बात मानते हैं कि एवोल्यूशन सच हो सकता है, 36% ने हाँ ही में जवाब दिया था। और 2013 में प्यू रिसर्च की, PEW रिसर्च की सर्वे से ये पता चला था कि हाँ कहने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे कंजर्वेटिव ममालिक में भी 26% ने हाँ कही थी। और यही वजह है कि 2014 में जब दाइश ने मुसल इराक में कब्जा किया था, तो सबसे पहले उन्होंने स्कूल्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ाने पर पाबंदी लगाई थी। इस मौके पर मुझे एक वाक्या याद आ गया जो मैंने सेंट ऑगस्टीन की 5वीं सदी की एक किताब दी सिविताते दे द सिटी ऑफ गॉड में पढ़ा था कि ईसा अलैहिस्सलाम के 170 साल बाद एक रोमन बादशाह जूलियन के सामने एक यूनानी ईसाई और एक मिस्री मुलहद का मुनाजरा हुआ था, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इन दोनों का नुक्ता नज़र सुनने के बाद जूलियन ने कहा था कि फिर हो सकता है कि एक के बजाय कई आदम आए हों, और इस वक्त इन तमाम ढांचों और फॉसिल्स को देखते हुए मुसलमानों के यहाँ भी एक बड़ा तबका इस कॉन्सेप्ट का कायल हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस मौजू की संजीदगी और इसकी हसासियत का अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस पर इंटेलेक्चुअल अंदाज में बात करना, दलाइल के साथ बात करना किस कदर ज़रूरी है, और इंटेलेक्चुअल अंदाज में बात करने के लिए हमें बहुत ही तवज्जो से कुरान, हदीस और बजाते खुद इन ढांचों को स्टडी करना होगा। अब ये ढांचे कितने अजीबो गरीब से हैं, चले मैं इनमें से कुछ के मुतालिक आपको बताता हूँ। 1974 में एथोपिया से एक ढांचा मिला जो बाईपैडल यानी कि दो टांगों पर चलने वाली किसी मखलूक का था। ये किसी औरत या औरत जैसी किसी मखलूक का ढांचा था। इट वॉज अ फीमेल स्केलेटन, और मुकामी जुबान में लोगों ने सिर्फ प्यार से इस ढांचे का नाम डिनकिनेश रखा, जिसका मतलब है कि तुम बहुत प्यारी हो। दुनिया आज इस ढांचे को लूसी के नाम से जानती है। पिछले 50 साल में लूसी को कई ममालिक में ले जाया गया, इस पर कई तरह से रिसर्च कंडक्ट की गई। बल्कि अगर आपने 2013 में हॉलीवुड की फिल्म लूसी देखी हो तो उस फिल्म में इसी लूसी का रेफरेंस था। बहरहाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी एज डिस्कवर की गई, इसकी उम्र मालूम की गई, तो पता चला कि लूसी आज से 32 लाख साल पहले ज़मीन में जिया करती थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने अपनी रिसर्च में बताया कि लूसी एक दरख्त से गिरकर मरी थी और बाद में इसे किसी जानवर ने खा लिया था, और इस जानवर का इनफैक्ट एक दांत आज भी लूसी की कमर की हड्डी में फंसा हुआ है। इसी तरह दो और ढांचे जिनमें से एक एथोपिया से मिला जो आज से 20 लाख साल पहले ज़मीन पर चला करता था, और दूसरा कीनिया से मिला एक ढांचा तुर्काना बॉय जो बिल्कुल एक नौउम्र से लड़के का ढांचा था। लेकिन मैं आपको दो बहुत ही अजीबोगरीब दरख्तों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। पहली तो आज के इसराइल में मिली थी, ये एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 ढांचों की पूरी एक फैमिली थी जिसे कज़फ़े कहते हैं। और सबसे अजीब बात कि इनमें से जो ढांचा सबसे छोटा था वो एक बच्चे का था जिसके हाथ में 12 सिंगे के सींग थे। और दूसरी अजीब दरियाफ्त, इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ी कार लियांगबुआ में हुई थी, और वहाँ पर भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कस्बे की तरह नौ ढांचों की पूरी एक फैमिली थी। और सबसे अजीब बात कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ 3 फुट के थे, यानी कि आज के हिसाब से बिल्कुल बौने, बल्कि इन्हें तो नाम भी हॉबिट्स ही का दिया गया था, यानी कि बौने। इसके अलावा चाइना में पैकिंग मैन, ग्रीस में पेट्रालोनस्कल, ये सब लाखों साल पुराने ढांचों के फॉसिल्स हैं। और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला टोंग्स चाइल्ड, ये तो बेसिकली इतना अजीबोगरीब ढांचा था कि इसे ना ही इंसान ना ही हैवान, बल्कि एक अलहदा ही किस्म की मखलूक बताया जाता है। अब इस पॉइंट पर पहुंचकर मामलात काफ़ी उलझे हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये ढांचे हमारी लड़ाई एवोल्यूशन के उस नज़रिए से करवा रहे हैं जिसके मुताबिक इंसान हैवान से इवॉल्व हुआ। और इस लड़ाई को, इस आर्ग्यूमेंट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इस चैप्टर के अंदर मैं सबसे मुश्किल चैलेंज डाल रहा हूँ, यानी कि 1856 के जर्मनी में हुई वो दरियाफ्त। और वो ढांचा था इंसान से पहले गुजरी एक नस्ल नियंडरथल का, कि जो आज से 4.5 लाख साल पहले इस दुनिया में जाहिर हुए और आज से 40,000 साल पहले तक रहे। ये अब तक की सबसे मशहूर नस्ल है, और जब किसी फिल्म में पत्थर के ज़माने के लोग दिखाने हों तो इन्हीं नियंडरथल्स की शक्ल बनाकर दिखा दी जाती है। एक वहशी सी जंगली सी मखलूक जो मुँह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती और ग़ारों में रहती थी। नियंडरथल सबसे मुश्किल चैलेंज इसलिए है क्योंकि लूसी और टोंग्स चाइल्ड के बारे में तो आसानी से ये बात कही जा सकती है कि वो बहुत पुराने ढांचे थे। 32 लाख साल पुरानी लूसी तो प्राइमेट्स यानी कि चिंपैंजीज और गोरिल्ला वगैरह के ज़्यादा करीब थी, लेकिन नियंडरथल्स का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि आप देखेंगे कि वो वाकई इंसान के बड़े करीब की मखलूक थे। इनके ढांचे ज़्यादातर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के ममालिक में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इन फ्रांस, स्पेन, स्लोवाकिया एंड जर्मनी। और इनके ढांचों की साख्त देखकर पता चलता है कि वो एक खूनखार नस्ल थी। गारों में रहते और आग जला सकते थे, पत्तों और जड़ी बूटियों को बुनियादी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। नियंडरथल्स मर्दों का कद, देयर हाइट 5.5 फुट होता था और इनकी औरतों का कद 5 फुट। ये एम्बुश हंटर्स थे, यानी कि ग्रोह या जत्थे बनाकर और छुपकर 12 सिंहों, हिरनों और जंगली सूअरों का शिकार करते थे। और इनके घुटनों की साख बताती है कि वो बड़ी मजबूत जिसामत रखते थे और आराम से 35 से 40 मील दूर तक भाग सकते थे। नियंडरथल्स के मुतालिक ये सब बातें सुनकर अब आपको क्या लग रहा है? इन खसूसियात की वजह से दिमाग बड़ी आसानी से ट्रिक हो सकता है, बड़ी आसानी से सोच सकता है कि ये तो बड़ी इंसानी सी खसूसियात है, ये तो बड़ा ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर है, दवाई खाना, आग जलाना। और यही वो मौका है जहाँ बहुत से लोग नियंडरथल्स को इंसान के प्रीडिसेसर्स मान लेते हैं और एवोल्यूशन एक सच लगने लग जाता है। और इसी नाजुक मौके पर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम सवालों और शुबहात का जवाब कैसे देना है। इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ऐसे दलाइल मुहैया करने वाला हूँ कि एवोल्यूशन के मुतालिक ख़ुद आपका अपना कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली और बड़ी बात जो शुबहात को जन्म देती है कि नियंडरथल्स आग का इस्तेमाल करना जानते थे, वो आग को कंट्रोल करना जानते थे। ये बात हमें इस तरह से पता चलती है कि नियंडरथल्स की गारों में छतों और दीवारों पर मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलती है, जो बेसिकली आग के जलने के बाद पैदा होती है। लेकिन क्या आग लगाना, आग जलाना इनके इंसान होने का सबूत है? इस ज़मीन के ऊपर आग का इस्तेमाल पिछले 8 लाख साल से हो रहा है, लेकिन आग सिर्फ इंसान ही कंट्रोल करना नहीं जानता, इंसान के अलावा भी कुछ मखलूकात हैं जो आग का इस्तेमाल करती हैं। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के द ब्लैक काइट नामी एक उकाब के मुतालिक सुना है? एक लंबे अरसे तक यही समझा जाता रहा कि जब भी जंगल में आग लगती है, ब्लैक काइट आग की वजह से घास में उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ लपकता है। लेकिन अब आकर ये पता चला है कि ये आग अक्सर लगाता ही ब्लैक काइट है। ये सूरज की हिद्दत में पड़ी सूखी लकड़ियों को ढूंढता और इन्हें उठा उठा कर एक खुश्क जगह जमा कर लेता है। अब शदीद गर्मी से इन लकड़ियों में आग लग जाती है और फिर ब्लैक काइट इन्हें उठा उठा कर घास पर फेंकता है, जिससे घास के अंदर छुपे कीड़े बाहर निकल आते हैं और ये उन्हें खा जाता है। आग का इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं और भी मखलूकात जानती हैं और नियंडरथल्स उन्हीं मखलूकात में से एक मखलूक थे। दूसरी बात कि नियंडरथल्स की एक ऐसी आदत थी जिससे अक्सर लोग इस शक में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद वो इंसानी प्रीडिसेसर थे, और वो बात यह है कि वो लोग जड़ी बूटियों और पत्तों को एक बुनियादी सी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्या हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल इनके इंसान होने की दलील है? दवाई दुनिया का हर जानदार इस्तेमाल करता है। ब्राज़ील के मकाब पैरट्स एक ख़ास किस्म की मट्टी खाते हैं जिससे इनके पेट के अंदर मौजूद कीड़े और बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसी तरह मेडगास्कर के प्रेग्नेंट लीमर्स वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इंजीर के पत्ते खाते हैं जिससे फीमेल लीमर्स में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है। फिर कीनिया की प्रेग्नेंट हथिनियाँ भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे पत्ते खाती हैं जिन्हें वो अपनी नॉर्मल या यूजुअल डाइट में नहीं खाती। बल्कि शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ब्राज़ील के स्पाइडर मंकीज अपने मेटिंग सीजन के दौरान ख़ास किस्म के फल खाना शुरू कर देते हैं, और ये वो खासियत है जिसे आज तक हम सिर्फ इंसानों के साथ ही खास समझते चले आए थे। आपकी दिलचस्पी के लिए बता देता हूँ कि पूरे एनिमल किंगडम में जानवरों की जड़ी बूटियों और पत्तों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी एक स्टडी है जिसे ज़ू फार्माकोग्नोसी कहते हैं, जिसका लफ्जी मतलब ये है कि जानवरों का अद्वियात के मुतल्लिक इल्म। दवाइयाँ इंसान के अलावा भी मखलूकात इस्तेमाल करती हैं और नियंडरथल्स भी उन्हीं मखलूकात में से एक थे। तीसरी अहम बात जो नियंडरथल्स को इंसान का ही एक प्रीकर्सर मानने के हवाले से दलील है कि वो ग्रोहों की सूरत में शिकार करते थे, जत्था बनाकर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते और अपने शिकार का इंतज़ार करते। और इस सवाल का जवाब तो शायद सबसे आसान है। इस वक्त 307 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जो छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, मसलन बंगाल टाइगर्स, नाइल क्रोकोडाइल यानी दरियाए नील का मगरमच्छ, रीछ, और 400 से ज़्यादा ऐसे जानवर हैं कि जो जत्था या ग्रोह बनाकर शिकार करते हैं जिन्हें पैक हंटर्स कहा जाता है। और हैरत की बात कि इन जत्था बनाकर शिकार करने वालों में किलर वेल्स मछलियां भी शामिल हैं, इनमें हैरसिस हॉक नामी उकाब यानी परिंदे भी शामिल हैं, इनमें ग्रे वुल्व्स भेड़िए भी शामिल हैं। पैक हंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे शुरू के इंसानों के अलावा भी कई मखलूकात इस्तेमाल करती हैं और नियंडरथल्स भी उन्हीं मखलूकात में से एक मखलूक थे। अब इस पॉइंट पर आकर आपको इतना तो वाजह हो जाना चाहिए कि आग जलाना, दवाई इस्तेमाल करना और ग्रोह या जत्था बनाकर ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग करना, शिकार खेलना, ये बातें इंसान होने की दलील नहीं है। इंसानों के अलावा भी मखलूकात ये खसूसियात रखती हैं, लेकिन यहाँ से आगे अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे आप बहुत ही आसानी से नियंडरथल्स और इंसान में फ़र्क कर सकेंगे, और सबसे अहम दलील मैं सबसे आखिर में आपके सामने रखूँगा। मैंने आपको बताया था कि नियंडरथल्स यूरेशिया के इलाकों में रहते थे, मसलन जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया, स्पेन। ये वो ममालिक हैं जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, और जब नियंडरथल्स वहाँ रह रहे थे तो इस वक्त दुनिया में एक आइस एज का दौर चल रहा था, यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया बर्फ़ में ढकी हुई थी। और ये दौर यानी लास्ट ग्लेशियल पीरियड तो नियंडरथल्स के मालूम होने के बाद कहीं जाकर ख़त्म हुआ है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर नियंडरथल्स इंसान थे या इंसान का कोई प्रीकर्सर थे तो वो गर्म इलाकों की तरफ क्यों नहीं माइग्रेट कर गए? वो तो 35-40 मील भाग सकते थे आराम से उनसे। वो इन ठंडे अंधेरे मुल्कों की ठंडी अंधेरी गारों में रहना क्यों पसंद करते थे? इस सवाल से दो बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, नियंडरथल्स दिन की रोशनी को कम और रात के अंधेरे को ज़्यादा पसंद करते थे, और दूसरी बात कि इनकी हड्डियों से मिले जीन्स में दो बड़े ही दिलचस्प प्रोटीन्स मिलते हैं, ASB1 और EXOC6। ये दोनों जीन्स इस बात का वाज़े सबूत हैं कि वो दिन को सोते और रात को जागते थे, जबकि इसके बरक्स इंसान। आपके लिए ये बात शायद नई हो, लेकिन इंसान के जिस्म में एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसे सर्कैडियन साइकिल कहते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि ये सर्कैडियन साइकिल एक्चुअली सूरज यानी सोलर टाइम के साथ, सूरज की गर्दिश के साथ सिंक्ड होता है। यानी आसान तरीन अल्फाज में इस बात का ये मतलब है कि रात के वक्त इंसान की नींद फितरी है, ख्वाब वो चाहे या ना चाहे। सूरज ढल जाने के बाद रात के वक्त इंसान को नींद आए ही आएगी, और दिन के वक्त कुदरती तौर पर जाग जाना इसी सर्कैडियन साइकिल की वजह से ही होता है। और बड़ी खूबसूरती के साथ इंसान के इस फितरी तकाजे का जिक्र सूरह रूम की 23वीं आयत में है, 23rd आया में, कि उसकी कुदरत की निशानियां तुम्हारी रातों और दिन की नींद में है। दूसरी बात कि नियंडरथल्स में से 80% लोग 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस दौर के जानवर भी थे जिनकी गारों में रहने के लिए नियंडरथल्स को इनसे लड़ना पड़ता था। 2016 में नियंडरथल्स के 124 ढांचों पर बड़ी गहराई से एक स्टडी की गई थी, जिससे ये पता चला कि इन 124 में से 92 नियंडरथल्स को जानवरों ने ही मार डाला था, और इन जानवरों में सबसे ज़्यादा हमले केव बेयर यानी गारों में रहने वाले रीछ, फिर दूसरे नंबर पर बड़े बड़े दांतों वाले स्मिल्डोन शेर, और तीसरे नंबर पर भेड़ियों के हमले से मरने वाले नियंडरथल्स से, और बाकी 32 नियंडरथल्स खुराक की तलाश में मर गए या उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया, जिसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा बाद में चलकर बताऊँगा। नियंडरथल्स को ज़मीन में रहने के लिए जगह इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इन खौफनाक और द्योहैकल जानवरों के साथ हर वक्त जारी रहने वाली एक लड़ाई जो नियंडरथल्स की तरह ही मादूम हो गए, और फिर इस ज़मीन में इंसान के लिए जगह बनी। और इसी एहसान का जिक्र आपको सूरह आराफ में नज़र आएगा कि हम ही ने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी, हम ही ने इसमें तुम्हारा रिज्क भी रखा। तीसरी बात कि नियंडरथल्स की फिजियोलॉजी इंसान से बड़ी मुख्तलिफ है। इनके बड़े बड़े नस्लें थे, और इनके घुटनों की साख्त बताती है कि वो 35 से 40 मील दूर तक भाग सकते थे, और ये कि वो कैनिबल्स थे यानी कि एक दूसरे को ही खा जाने वाले थे, जैसा कि बास जानवर करते हैं, जैसा कि अक्सर चिंपैंजीज करते हैं, जैसा कि शेर भी करते हैं, जैसा कि हिपोपोटमस भी अक्सर करते हैं। बल्कि आपने हाइनास का नाम शायद सुन रखा होगा, ये एक ऐसा जानवर है जिसमें फीमेल मेल से बड़ी होती है, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि हाइनास की आदत है एक दूसरे को और अपने बच्चों को खा जाने की, लिहाजा फीमेल साइज़ में बड़े होने की वजह से मेल्स को डराकर अपने बच्चों को बचा लेती हैं, वरना मेल्स छोटे हाइना बच्चों को खा जाते हैं। क्रोएशिया, स्पेन और बेल्जियम की गारों में से मिलने वाले एक नियंडरथल की टांग की हड्डी तोड़कर उसमें से गुद्दा निकालकर खाया गया था, द बोन मैरो। फिर फ्रांस में मिले एक नियंडरथल के ढांचे की पसलियों पर किसी दूसरे नियंडरथल्स के दांतों के निशान थे, यानी कि साफ जाहिर है कि एक नियंडरथल ने दूसरे नियंडरथल को खा लिया था। और स्पेन में तो 12 ढांचे ऐसे मिले हैं जिनके सर तोड़कर इनमें से दिमागों को निकाल कर खाया गया था, और इनमें से 3 ढांचे इनफैक्ट बच्चों के थे। डरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल पेल्टिक ने एथोपिया से मिलने वाले फॉसिल्स A1333 को स्टडी किया था, और वो कहते हैं कि जर्मनी से लेकर चाइना तक फैले हुए फॉसिल्स की खोपड़ियां टूटी हुई हैं, इनके गुद्दों को निकाल कर खाया गया है। एक लंबे अरसे तक यही समझा जाता रहा कि खोपड़ियों का इस तरह तोड़कर दिमाग निकाले जाना शायद किसी किस्म की कोई मजहबी रस्म थी, लेकिन 2010 में मजीद बेहतर टेक्नोलॉजी सामने आई जिससे इन हड्डियों की मजीद बेहतर स्टडी हुई, और इस बेहतर स्टडी से एक बेहतर इंटरप्रिटेशन मिली, और हमें पता चला कि ये कोई मजहबी रस्म नहीं थी बल्कि खुराक के हसूल के लिए नियंडरथल्स एक दूसरे के दिमाग को निकाल कर खा रहे थे। बल्कि क्रोएशिया में गार है जिसे विंदिया केव कहते हैं, इसमें नियंडरथल्स की हड्डियों में से एक भी खोपड़ी सलामत नहीं है, ये सब की सब खोपड़ियों और हड्डियों को तोड़कर इनमें से दिमाग और गुद्दा निकाल कर खाया गया है। लेकिन इंसान ذرا خود سوچئے کہ 40,000 سال پہلے نینڈرتھلز معدوم ہوئے ہیں اور ان کے صرف چند ہزار سال بعد انسان سولومن آئلینڈز پہ ارویاں یعنی کہ ٹیرو کاشت کر رہے تھے۔ انفیکٹ یہ زراعت میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے پرانا ثبوت ہے کہ 28,000 سال پہلے سولومن آئلینڈز پر عربیوں کی کاشت۔ نینڈرتھلز اور انسان کی خوراک کے حوالے سے دوسرا فرق کہ کہاں 40,000 سال پہلے نینڈرتھلز ایک دوسرے کی ہڈیوں کا گوتا نکال نکال کر کھا رہے تھے اور کہاں صرف چند ہزار سال کے بعد تبریا کی جھیل سے، سی آف گیلیلی سے ایسے اوزار ملتے ہیں کہ جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان اوزاروں پر نشان بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی نرم، کسی سبز فصل کو کاٹا ہو۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی تبریا جھیل ہے یعنی کہ دی سی آف گیلیلی، جس کا پانی یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ایک نشانی کے طور پر خشک ہو جانا ہے۔ انسان اور نینڈرتھلز کی خوراک میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق دیے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت کی۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ 40-40 میل دور پیدل بھاگنے والی مخلوق نینڈرتھلز کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور تری کی سواریاں ملیں، ایک دوسرے کو کھا جانے والے نینڈرتھلز کے مقابلے میں آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے، عربیاں، مکئی، گندم۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم تھی، اور ذرا اس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اور ان بہت سی مخلوقات میں نینڈرتھلز یقیناً شامل ہیں۔ اب تک آپ کو اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ نینڈرتھلز انسان سے مختلف ایک علیحدہ مخلوق تھے، صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق جس کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور بزائش نسل کرنا تھا۔ اور میں آپ کو اس کی بھی دلیل سورہ شعراء سے پیش کرتا ہوں کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ عموماً یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد یا اس کا مطلب گزشتہ اقوام لیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس پہلے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے عربی لفظ پر تو غور کریں، جبلت الاولین۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جبلت کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نے اردو کی کلاس میں پڑھا ہوگا انسان کے جبلی تقاضے۔ جبلت کہتے ہیں زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی شکل کو، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شکل، ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا ہے۔ اور اس جبلت الاولین یعنی پہلے گزر جانے والی ایک جبلی زندگی کے کانسیپٹ پر نینڈرتھلز نامی یہ مخلوق بالکل فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے۔ اور اب بنی آدم کے نینڈرتھلز سمیت اس زمین پر رہنے والے کسی بھی دوسری مخلوق سے ممتاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک کے بیسکلی بالکل شروع میں ہی بتا دی ہے، سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدائش پر ملا اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ، ایک تحفہ، زبان، بولنے کی صلاحیت۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، انہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی، انہیں زبان دے دی گئی۔ اور چونکہ یہ دلیل میں قرآن پاک سے اٹھا رہا ہوں، اس لیے اس چیپٹر میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ آدم اور ان دوسری مخلوقات میں فرق کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی دلیل ہو۔ انسان میں ایک جین ہوتا ہے جسے فوکس پی ٹو کہتے ہیں، یعنی فوک ہیڈ فوکس پروٹین۔ یہ ایک ایسا پروٹین ہے کہ جو انسانوں میں زبان یعنی لینگویج اور بولی کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ سائنسدان تو اکثر مذاق میں اسے گرامر جین بھی کہتے ہیں۔ 1998 میں انگلینڈ میں ایک پوری فیملی اپنے اسپیچ ڈس آرڈر کے علاج کے لیے ہاسپٹل گئی، یعنی کہ وہ لوگ صحیح سے بول نہیں پاتے تھے، تو اس وقت حادثاتی طور پر اس جین کی ڈسکوری ہوئی تھی اور تبھی اسے لینگویج جین کا نام دیا گیا۔ یہ جین بولی کے علاوہ پھیپھڑوں اور جسم کی بڑھوتری کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم میں یہ جین نہ ہوتا تو نہ صرف ہم زبان جیسی صلاحیت سے محروم ہوتے بلکہ ہمارے قد بھی بہت چھوٹے ہوتے۔ نینڈرتھلز میں یہ جین تو تھا لیکن اس کا وہ ویریئنٹ نہیں تھا جو انسان میں ہوتا ہے. اس بات کا آسان ترین الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ نینڈرتھلز صرف آوازیں نکال سکتے تھے, بلکہ ڈاکٹر لیبرمن فلپ نے بڑی محنت سے نینڈرتھلز کا ووکل ٹریکٹ یعنی گلے کا بولنے والا حصہ بھی تیار کیا تھا اور نینڈرتھلز کی قدرتی آواز بنانے کی پوری کوشش کی تھی. لیکن آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نینڈرتھلز زیادہ سے زیادہ ایک نو مولود بچے کی طرح آواز نکال سکتے تھے, وہ ناک سے بالکل بھی نہیں بول سکتے تھے جیسا کہ انسان نون کی آواز نکال لیتا ہے. لیکن انسان کو ملا یہ تحفہ. آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر 18 میکانزمز کام کر رہے ہیں. ایک ایسی صلاحیت ہے جو نینڈرتھل سمیت کسی بھی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے. لیکن ابھی تو اس چیپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوا ہے, کیونکہ یہ حصہ بات کرے گا اللہ کے آدم علیہ السلام کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفے کی, تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جانے کی, لینگویج کی.